एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लेकिन दुखद रूप से असफल सैन्य अभियान की कहानी है।
हाँ, कॉर्नेलियस रायन की मशहूर किताब ए ब्रिज टू फार।
बिल्कुल, ये किताब है ऑपरेशन मार्केट गार्डन के बारे में, मतलब इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला।
और उनका मकसद था कि भाई 1944 में क्रिसमस तक युद्ध खत्म कर देंगे, पर जाहिर है ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी योजना, इतने सारे साधन, फिर भी इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुई?
और देखिए, यही बात इसे आज भी मतलब प्रासंगिक बनाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी लड़ाई की कहानी भर नहीं है।
सही कहा।
ये हमें सिखाती है महत्वाकांक्षा की सीमाओं के बारे में, योजना बनाने में जो गलतियां होती हैं उनके बारे में, खुफिया जानकारी को नजरअंदाज करने के क्या खतरे हैं, और सबसे बढ़कर युद्ध का जो मानवीय पक्ष है उसके बारे में।
हाँ, ये दिखाती है कि कैसे ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों का अति आत्मविश्वास और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है।
बिल्कुल, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, कॉर्नेलियस रायन।
हाँ, कॉर्नेलियस रायन कोई मतलब आम इतिहासकार नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक आयरिश अमेरिकन पत्रकार थे, लेखक थे, और उन्होंने खुद युद्ध को बहुत करीब से देखा था।
अच्छा।
जी हाँ, रॉयटर्स और डेली टेलीग्राफ के लिए युद्ध संवाददाता के तौर पर काम किया। डी डे लैंडिंग से लेकर जर्मनी में मित्र देशों की बढ़त तक सब कवर किया उन्होंने, और वो अनुभव उनकी लिखाई में साफ झलकता है।
तो उनकी खासियत क्या थी?
उपन्यास जैसा रोमांच भी। उन्होंने ऐतिहासिक लेखन की क्या कहते हैं शैली ही विकसित कर दी, जिसमें बड़ी घटनाओं को अनगिनत लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए दिखाया जाता है।
और उनका शोध कमाल का था, सुना है इस किताब के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने सालों लगाए।
हाँ, सालों लगाए, और दोनों पक्षों के मतलब मित्र देशों और जर्मन सेना दोनों तरफ के करीब 2000 से ज्यादा जीवित लोगों से बात की।
2000?
हाँ, सैनिक थे, डच प्रतिरोध के लोग थे, और सबसे अहम वो आम डच नागरिक जो इस पूरी लड़ाई के बीच में फंस गए थे।
और एक पत्रकार होने के नाते वो सिर्फ सैन्य रणनीति तक ही नहीं रुके होंगे।
बिल्कुल नहीं, उन्होंने इंसानी जज्बातों को, डर, हिम्मत, भ्रम, पीड़ा, किस्मत, इन सबको अपनी कहानी का हिस्सा बनाया। ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उस दौर का एक जीता जागता एहसास कराती है ये किताब।
तो अब आते हैं किताब पर। ए ब्रिज टू फार आखिर है किस बारे में?
ये है सितंबर 1944 में हुए 9 दिनों के ऑपरेशन मार्केट गार्डन का एक बहुत ही विस्तृत, आप कह सकते हैं 360 डिग्री का नजारा। जैसा हमने कहा, मित्र देशों का प्लान था क्रिसमस तक युद्ध खत्म करने का।
सुनने में तो योजना बड़ी जबरदस्त थी। दो हिस्से थे इसके, है ना?
जी हाँ। पहला मार्केट, इसमें हजारों अमेरिकी, ब्रिटिश और पोलिश पैराट्रूपर्स को दुश्मन के इलाके हॉलैंड में उतरना था और जरूरी पुलों पर कब्जा करना था।
और दूसरा हिस्सा था गार्डन।
हाँ, गार्डन, इसमें ब्रिटिश जमीनी सेना जिसे XX कॉर्प्स कहते थे, उसे एक पतली सी सड़क से तेजी से आगे बढ़कर इन पैराट्रूपर्स तक पहुंचना था।
मकसद था जर्मनी की वो मशहूर सुरक्षा दीवार सीगफ्रीड लाइन, उसे पार करके सीधे जर्मनी के औद्योगिक दिल रूहर घाटी पर हमला करना, मतलब एक झटके में युद्ध खत्म।
सपना तो यही था, लेकिन रायन दिखाते हैं कि ये सपना शुरू से ही कितना कमजोर बुनियाद पर टिका था।
हाँ, और वो नॉर्मंडी में जीत मिली थी ना, उसके बाद मित्र देशों के कमांडरों में गजब का आत्मविश्वास आ गया था, शायद अहंकार कहना ज्यादा सही होगा। और योजना बनाने में बहुत जल्दबाजी की गई, कुछ ही हफ्तों में सब तैयार, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी, मतलब सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चलना था।
और सबसे बड़ी चूक, वो खुफिया चेतावनियों की पूरी तरह से अनदेखी।
हाँ, डच अंडरग्राउंड से हवाई जासूसी से साफ पता चल रहा था कि आर्नहम शहर के पास जो सबसे दूर का लक्ष्य था, वहां 2 अनुभवी जर्मन पैंजर डिवीजन मौजूद हैं, टैंक यूनिट्स।
लेकिन आला कमांड ने से मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि अरे, जर्मन सेना तो पूरी तरह टूट चुकी है, अब उनमें दम नहीं रहा।
और यहीं पर वो मशहूर बात कही गई थी जो किताब का टाइटल भी बनी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल फ्रेडरिक ब्राउनिंग ने अपने कमांडर फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी से कहा था,
मुझे लगता है कि हम शायद एक पुल ज्यादा जा रहे हैं।
आई थिंक वी मे बी गोइंग अ ब्रिज टू फार। मतलब शायद हम अपनी हद से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी बात जाहिर है अनसुनी कर दी गई।
तो योजना बन गई, कागज पर सब ठीक लग रहा था, अब देखते हैं कि जमीन पर क्या हुआ। रायन हमें सीधे ले जाते हैं उस रविवार 17 सितंबर 1944 को।
हजारों विमान, ग्लाइडर्स इंग्लैंड से उड़ान भरते हैं, एक शानदार नजारा रहा होगा वो।
बिल्कुल, और नीचे हॉलैंड में डच लोग खुशी से झूम उठते हैं, उन्हें लगता है बस आजादी आ ही गई।
शुरुआत में थोड़ी कामयाबी मिलती भी है, अमेरिकी पैराट्रूपर्स आइंडहोवन और ग्रेव के पास अपने पुलों पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ शुरू होती है आर्नहेम में, सबसे दूर वाला लक्ष्य।
हाँ, वहाँ ब्रिटिश फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन को पुल से करीब 8 मील दूर उतारा जाता है। डर था जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का, और उनके जीप्स, भारी हथियार वाले ग्लाइडर, वो लैंडिंग में ही टूट जाते हैं।
और फिर होती है वो सबसे बड़ी तबाही, उनके रेडियो सेट काम करना बंद कर देते हैं।
सोचिए जरा, पूरी डिवीजन एक दूसरे से और अपने हेडक्वार्टर्स से बात ही नहीं कर पा रही, एक पूरी आधुनिक सेना अचानक जैसे बहरी और गूंगी हो गई हो।
सिर्फ एक बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन फ्रॉस्ट की, वो किसी तरह लड़ते भिड़ते आर्नहेम पुल के उत्तरी छोर तक पहुंच पाती है और मोर्चा संभाल लेती है, बाकी सबसे एकदम कटी हुई।
और यहीं से शुरू होता है लड़ाई का वो भयानक दौर जिसे रायन द फाइट कहते हैं। जमीनी सेना एक्स कॉप्स, जिसे तेजी से आर्नहेम पहुंचना था,
वो एक अकेली पतली सी सड़क पर फंस जाती है। सैनिक उसे हेल्स हाईवे कहने लगते हैं, नरक का रास्ता,
क्योंकि जर्मन सैनिक दोनों तरफ से लगातार हमले करते हैं और ब्रिटिश टैंक, गाड़ियां, वो कछुए की चाल से आगे बढ़ पाती हैं, हर कदम पर खून खराबा।
और आर्नहेम में फ्रॉस्ट के सैनिकों तक कोई मदद पहुंच ही नहीं पाती। हालत इतनी खराब थी कि उनके डिवीजन कमांडर मेजर जनरल रॉय इरक्वाट, वो खुद लगभग 2 दिन तक दुश्मन से घिरे एक घर की अटारी में छिपे रहे।
क्या बात कर रहे, कमांडर खुद?
हाँ, उनकी पूरी डिवीजन सबसे मुश्किल वक्त में बिना लीडर के लड़ रही थी।
अविश्वसनीय। उधर नाइमेगन में अमेरिकी 82वीं डिवीजन के सैनिक वॉल नदी पर बने पुल पर कब्जा करने के लिए दिन के उजाले में नाव में बैठकर हमला करते हैं।
हाँ, एक अविश्वसनीय बहादुरी का कारनामा था वो। वे पुल जीत भी लेते हैं, लेकिन
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आर्नहेम पुल पर 4 दिन तक भूखे प्यासे, लगभग बिना गोला बारूद के लड़ने के बाद फ्रॉस्ट के सैनिक हार मान लेते हैं या मारे जाते हैं।
और जो बाकी ब्रिटिश सैनिक थे वो आर्नहेम के पास ऑस्टरविक नाम की जगह पर एक छोटे से घेरे में सिमट जाते हैं।
हाँ, द कॉल्ड्रन, यानी कड़ाही, गोलियों, बमों और मौत की कड़ाही। ऊपर से मौसम भी खराब हो जाता है,
तो हवा से मदद भेजना भी नामुमकिन। और जब पोलिश पैराशूट ब्रिगेड को मदद के लिए उतारा जाता है तो वो सीधे जर्मन गोलियों के बीच उतरते हैं, उन्हें भारी नुकसान होता है।
रायन यहाँ ऑस्टरबी के अंदर के हालात का बड़ा दर्दनाक वर्णन करते हैं। घायल सैनिक बेसमेंट में बने अस्पतालों में पड़े हैं, दवाइयां खत्म, खाना खत्म, डच डॉक्टर, नर्स, आम नागरिक, वो अपनी जान पर खेलकर उनकी मदद कर रहे हैं।
लेकिन अंत में सबको समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती, और फिर वो दर्दनाक फैसला लिया जाता है बचे हुए सैनिकों को निकालने का।
25-26 सितंबर की रात, ऑपरेशन बर्लिन, भारी गोलीबारी की आड़ में जो सैनिक बच गए थे, थके हारे, घायल, उन्हें नावों से राइन नदी के पार निकाला जाता है।
10,000 से ज्यादा सैनिक उतरे थे आर्नहेम और ऑस्टरबीक में, वापस कितने आ पाए?
करीब 2,200 के आसपास। एक भयानक भयानक हार।
और रायन कान यहीं खत्म नहीं करते, वो बताते हैं कि पीछे छूटे हजारों घायल युद्ध बंदी बन गए, कुछ को बहादुर डच लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर छुपा लिया।
लेकिन उन डच नागरिकों का क्या हुआ जिन्होंने मित्र देशों का स्वागत किया था? उन पर जर्मनों का कहर टूटा, भयानक बदला लिया गया, आर्नहेम शहर खाली करा दिया गया।
और फिर आई वो 1944-45 की भूख की सर्दी, हंगर विंटर, जिसमें हजारों डच लोग भुखमरी से मारे गए। जो ऑपरेशन क्रिसमस तक युद्ध खत्म करने वाला था वो एक भयानक त्रासदी बन गया।
तो इस पूरी मतलब दर्दनाक कहानी से सबक क्या निकलते हैं? पहला और सबसे साफ सबक तो है अहंकार, ह्यूब्रिस और हकीकत से आंखें मूंद लेना।
हाँ, मित्र देशों के कमांडरों ने, खासकर मॉन्टगोमरी ने, जर्मन सेना की ताकत को बहुत कम करके आका और हर चेतावनी को नजरअंदाज किया। वो अपनी ही सफलता की कहानी में इतने खो गए थे कि उन्होंने एक ऐसा प्लान बना दिया जो जमीन पर उतर ही नहीं सकता था।
बिल्कुल। दूसरा सबक है युद्ध का कोहरा, फॉग ऑफ वॉर। कैसे भ्रम, गलत जानकारी और हाँ, किस्मत, ये सब मिलकर लड़ाई का पासा पलट सकते हैं।
वो आर्नहेम में ब्रिटिश रेडियो का फेल होना सबसे बड़ा उदाहरण है इसका।
हाँ, उसने पूरी रणनीति को ही ध्वस्त कर दिया। ये दिखाता है कि युद्ध कितना अनिश्चित होता है और योजनाएं कैसे जमीनी हकीकत और अप्रत्याशित घटनाओं से टकराकर बिखर जाती हैं। तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी खतरनाक हो सकता है।
तीसरा, ऊपर बैठे कमांडर और जमीन पर लड़ रहे सैनिक, उनके बीच की वो गहरी खाई।
हाँ, वो गैप, नक्शे पर पिन हिलाने वाले जनरलों की दुनिया और खाइयों में गोलियां छेल रहे सैनिकों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। योजना बनाने वालों की जो टाइमलाइन थी, वो जमीन पर लड़ रहे सैनिकों की भयानक मुश्किलों से मेल ही नहीं खाती थी।
लेकिन इसके बावजूद चौथा सबक है वो अविश्वसनीय साहस और बलिदान।
हाँ, इनकैलक्युलेबल करेज एंड सैक्रिफाइस। योजना चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, सैनिकों ने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी वो हैरान करने वाली है। चाहे वो नाइमिगेन में नदी पार करते अमेरिकी हों या आर्नाहेम पुल पर आखिरी गोली तक लड़ते ब्रिटिश सैनिक। रायन दिखाते हैं कि डर के साये में भी इंसान कैसे डटा रह सकता है।
और पांचवां, जिसे रायन बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं, वो है युद्ध में आम नागरिक की भूमिका।
हाँ, ये सिर्फ सैनिकों की कहानी नहीं है। रायन डच नागरिकों को कहानी के केंद्र में रखते हैं। उनकी शुरुआती खुशी, उनका डर, सैनिकों की मदद करने का उनका जज्बा और फिर उनका वो भयानक अंत। ये याद दिलाता है कि युद्ध की सबसे भारी कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं।
और छठा, किस्मत या कहिए बदकिस्मती का खेल।
बिल्कुल, कई छोटी छोटी बातें गलत हुई, जैसे जर्मन फील्ड मार्शल वॉल्टर मॉडल का हेडक्वार्टर ठीक ब्रिटिश लैंडिंग जोन के पास होना। ये तो कमाल की बदकिस्मती थी।
हाँ, या फिर एक दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी ग्लाइडर से ऑपरेशन के पूरे प्लान का जर्मनों के हाथ लग जाना,
या एन मौके पर मौसम का खराब हो जाना। ये सब मिलकर बताते हैं कि बड़ी योजनाओं में छोटी छोटी चीजें भी कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। सिस्टेमिक फेलियर जिसे कहते हैं।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे जनरल ब्राउनिंग का वो डर।
मुझे लगता है कि हम शायद एक पुल ज्यादा जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये पूरी कहानी का निचोड़ है, अपनी हद से आगे बढ़ जाने का खतरा।
और वो आर्नेम में रेडियो का पूरी तरह फेल हो जाना।
हाँ, वो सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, वो संवादहीनता का, उस युद्ध के कोहरे का प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि कैसे सबसे बहादुर सैनिक भी बिना संपर्क के, बिना कम्युनिकेशन के असहाय हो सकते हैं।
एक और दिलचस्प बात है, दुश्मन की तरफ से मिली तारीफ, वो जर्मन एसएस जनरल विलहेम बिट्रिच।
हाँ, उन्होंने ब्रिटिश पैराट्रूपर्स के बारे में कहा था सार रूप में कि इनका लड़ने का जज्बा कमाल का था, मैंने ऐसे सैनिक कभी नहीं देखे। दुश्मन से मिला ये सम्मान उन सैनिकों के बलिदान को और भी मार्मिक बना देता है, नहीं?
बिल्कुल। और डच नागरिकों का अनुभव, रायन ने जैसे उसे बयान किया है कि आजादी का जश्न कुछ घंटों का ही था, फिर आई लड़ाई जिसने घर उजाड़ दिए, और उसके बाद आया बदला और भूखमरी जिसने उम्मीदें तोड़ दी।
उफ, ये दिखाता है कि कैसे मुक्तिदाता बनने आए लोग अनजाने में तबाही का सबब बन गए।
तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, इससे आज की दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या हमारी अपनी जिंदगी, बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
हाँ, सबसे पहले तो ये आशावाद पूर्वाग्रह यानी ऑप्टिमिज्म बायस के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी है। मतलब हम अक्सर सफलता की उम्मीद में जोखिमों को कम करके आंक लेते हैं। मार्केट गार्डन के योजनाकारों ने बिल्कुल यही किया था।
और ये एक मजबूत प्लान बी, एक आकस्मिक योजना कंटिंजेंसी प्लानिंग के महत्व को दिखाता है। मार्केट गार्डन में कोई बैकअप प्लान था ही नहीं,
सब कुछ उस एक सड़क हेल्स हाईवे पर टिका था। ये किसी भी सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का क्लासिक उदाहरण है।
आज के दौर में सोचिए, सप्लाई चेन हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसी कमजोरियों को पहचानना और उनके लिए तैयार रहना कितना जरूरी है।
लीडरशिप के लिए भी यहाँ गहरे सबक हैं। ऊपर बैठे लोगों को नीचे से आ रही आवाजों, चेतावनियों को सुनना चाहिए। हाँ, वो आर्नहेम के पास जर्मन टैंकों की खुफिया जानकारी को नजरअंदाज करना, ये पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यानी कॉन्फर्मेशन बायस का सटीक उदाहरण है। हम सिर्फ वो ही सुनना और मानना चाहते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता हो। अच्छे लीडर वो होते हैं जो बुरी खबर सुनने की हिम्मत रखते हैं।
और संचार, कम्युनिकेशन, आर्नहेम की लड़ाई तो जैसे चीख चीख कर कहती है कि किसी भी टीम के लिए कम्युनिकेशन उसकी सांसों की तरह है।
सही कहा, इसके टूटते ही सब बिखर जाता है। ये बात ऑफिस की टीम से लेकर किसी बड़े संगठन तक हर जगह लागू होती है।
और ये भी कि कैसे किसी जटिल सिस्टम में कई छोटी छोटी समस्याएं मिलकर एक बड़ी विफलता खड़ी कर सकती हैं। द कैस्केड इफेक्ट।
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ बहादुरी और बलिदान से जंग नहीं जीती जाती, उनके साथ समझदारी, भरी हकीकत पर आधारित और लचीली योजना का होना भी उतना ही जरूरी है। ये किताब ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के अहंकार के खतरों की एक जबरदस्त मतलब चेतावनी है।
और मेरे लिए इस कहानी का मानवीय पहलू सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ टैंकों और गोलियों की कहानी नहीं है, ये हजारों इंसानों के डर, उनकी उम्मीदों, उनकी हिम्मत और उनकी तकलीफों की कहानी है। रायन ने दुश्मन सैनिकों को भी शैतान नहीं, इंसान की तरह दिखाया है। ये महत्वाकांक्षा और क्षमता के बीच संतुलन साधने की जरूरत को बहुत गहराई से दिखाती है।
वाकई ए ब्रिज टू फार सिर्फ एक असफल सैन्य अभियान का विश्लेषण भर नहीं है, ये दबाव में इंसानियत के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पहलुओं के कालजयी मतलब टाइमलेस खोज है।
हाँ, और ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास से सबक लेना कितना जरूरी है ताकि हम वही गलतियां ना दोहराएं। शायद सोचने वाली बात यह है कि बड़ी सफलताओं की चाह में हम कितना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं
और कब वो जोखिम सिर्फ दुस्साहस बन जाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।